हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक ने एटीट्यूड से कहा, मैंने अब अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखने का फैसला किया है और मैं उसे किस दिशा में लेकर जाऊंगी ये फैसला सिर्फ मैं करूंगी, कोई और नहीं। ये बोलकर झलक तुरंत ही उठकर जाकर बाहर खड़ी हो गई थी। वहीं अब अनामिका ने तुरंत ट्रेनर से सॉरी करते हुए बोली थी, माफ कीजिएगा सर, ये लड़की थोड़ा सा पागल हो गई है, मैं इसे समझा कर लेकर आती हूँ। लेकिन ट्रेनर अब काफी हद तक गुस्से से भर चुके थे। वे बोले थे, लड़की का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और पढ़कर साइन कर दीजिए, क्योंकि तुम लोग सिफारिश ऐसे लोगों की लेकर आए हो कि मुझे तुम लोगों को यहाँ रखना ही होगा, वरना जिस तरीके से तुम्हारी बहन के जो तेवर है ना, मैं उसे पहले ही दिन उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देता। ये बोलकर ट्रेनर गुस्से से वहां से चला गया। जल्दी से अनामिका पेपर साइन करके बाहर आ गई और झलक का साइन लेने के लिए उसके पास आ गई। झलक को देखकर बोली, क्या कर रही हो यार, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर नफरत और गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन यार यहाँ पर अनजान लोगों पर अपनी नफरत दिखाने की क्या जरूरत है। अब एक काम करो, मैं तो कहती हूँ, अरे ये सब छोड़ो यार, सबसे पहले हम मुंबई चल रहे हैं, वहां जाकर तुम सबसे पहले सिद्धार्थ खुराना का सिर फोड़ाओ, कम से कम तुम्हारे अंदर की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो कम होगी। अब सिद्धार्थ का नाम आते ही झलक ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और सीधा ट्रेनर की केबिन की दीवार पर घूंसा मारते हुए बोली थी, मैं उस इंसान का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं उससे नफरत करती हूँ, इतनी ज्यादा नफरत की कोई सोच भी नहीं सकता। झलक का ऐसा व्यवहार देखकर अनामिका खुद ही थोड़ा डर गई थी और मन ही मन बोली थी, हम तो इसे जिंदगी से जीने के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बाहर निकल गई है, और ऐसा निकल गई है कि दूसरों की जान लेने पर उतारू हो गई है। अब क्या करूं रे, दादाजी कहाँ रह गए, अभी तक क्यों नहीं आए, दादाजी सामने रहेंगे तो थोड़ी बहुत शांत तो रहेगी। यही सोचकर अब अनामिका जल्दी से दादाजी को फोन मिलाने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि दादाजी फोन उठाते उनकी गाड़ी तुरंत एंटर हो गई थी। अब जैसे ही वहां महागुरु की गाड़ी एंटर हुई तो सभी लड़के लड़कियां ही नहीं बल्कि ट्रेनर भी जाकर वहां खड़े हो गए थे। सभी ने सिर झुकाकर उनके सामने खड़े होना शुरू कर दिया था। अपने दादाजी का इतना मान सम्मान देखकर झलक और अनामिका का चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर गया था। सभी लोगों को उन्हें देखकर किसी अलौकिक शक्ति की तरह का प्राउड महसूस हो रहा था। वहीं अनामिका हैरानी से बोली थी, दादाजी इस तरह के इतने बड़े गुरु होंगे यार, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो कभी भी इस बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं, और सच तो ये है कि मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं पापा को ढूंढने में ही ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त गुजारती रही, दादाजी की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश ही नहीं की। कहीं ना कहीं अनामिका मायूस हो गई थी। झलक ने उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, अगर तुमने अपनी जिंदगी के अनमोल मोमेंट खो दिए हैं तो क्या हुआ, अब तो तुम जी सकती हो ना, चलो मेरे साथ। ये बोलकर झलक और अनामिका दोनों जाकर वहां खड़ी हो गई थीं, लेकिन उन दोनों ने ही अपना सिर नहीं झुकाया था। ये देखकर ट्रेनर घूर घूर कर अनामिका और झलक को देखने लगा था। वहीं उसने अनामिका से कहा, अपना सिर झुकाओ, लेकिन अनामिका नासमझी में इधर उधर देखने लगी। वहीं ट्रेनर मन ही मन बुदबुदाया, पता नहीं किस किस तरह के पागलों को भर्ती कर लिया है। वहीं झलक ट्रेनर की आवाज तो समझ गई थी, लेकिन जानबूझकर उसने अपना सिर नहीं झुकाया। वहीं जैसे ही अब दादाजी ने ये दृश्य देखा, उनका दिल तो किया कि वे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन फिलहाल उन्होंने सिचुएशन को संभालते हुए सभी लोगों की तरफ देखकर कहा था, चलो बच्चों सीधा खड़े हो जाओ, बस बस। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सभी लोग सीधा खड़े हो गए थे। वहीं ट्रेनर खून का घूंट पीकर रह गया था और जल्दी से दादाजी की तरफ माफी मांगते हुए बोला था, माफ कीजिएगा गुरुजी, ये दोनों लड़कियां आपका अभिवादन करना नहीं जानती, क्योंकि अभी अभी इनका यहाँ नया एडमिशन हुआ है और आज इनका पहला दिन है, इन्हें अभी यहाँ के रूल्स रेगुलेशन और आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दादाजी मन में बोले थे, हमारे बारे में तो ज्यादातर किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन फिलहाल। फिर दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा था, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिवाकर तुम तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो, चलो चलते हैं और मुझे सारी डिटेल्स बताओ कि बच्चों का कहाँ तक क्या चल रहा है, क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तभी वो ट्रेनर बोलने लगा था,
अब कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? आप तो हमारे माँ बाप जैसे हैं। आपकी वजह से ही इतने सारे बच्चे इतने अच्छे माहौल में ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। आप हर समय बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ों का प्रबंध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, आज आपकी वजह से कितने ही सारे बच्चे अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हैं और कुछ बच्चों ने तो अपना खुद का मार्शल आर्ट्स का इंस्टीट्यूट भी खोल लिया है, जो यहाँ से काबिल होकर गए हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं दादाजी को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिलहाल उन्होंने अनामिका को देखकर अपने पास बुलाते हुए कहा था, क्या बात है बच्ची, क्या तुम लोगों का आज यहाँ पहला दिन है? तभी अनामिका ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी थी, लेकिन झलक ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं ट्रेनर को झलक काफ़ी बुरी लगने लगी थी। वो सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी अकड़ में कैसे हो सकती है। लेकिन दादाजी अच्छी तरह जानते थे कि झलक इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह है। उसके अंदर पहले जीने का जज्बा नहीं था, लेकिन अब उसी जज्बे का वो सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते थे और उसे इतना अच्छा और ताकतवर इंसान बना सकते थे कि वो अपने दुश्मनों का अकेले भी मुकाबला कर सके। कहीं ना कहीं यही सोचकर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा था, एक काम करो, तुम दोनों जाओ और जाकर इस पूरी अकादमी का एक चक्कर काट कर आओ। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वो ट्रेनर मुस्कुरा उठा था। लेकिन अनामिका दादाजी को देखने लगी थी, मानो कहना जा रही हो, ये क्या दादाजी, पहले ही दिन इतना सारा काम? लेकिन झलक बिना नाक भौंसे कोड़े फटाफट राउंड लेने के लिए चलती थी। वहीं अनामिका भी उसके पीछे दौड़ती हुई बोली थी, अरे झलक, रुक तो जा यार, मैं भी तो तेरे साथ हूँ, तुम क्या अकेले ही चल रही हो, मुझे भी तो साथ लेकर चलो। लेकिन झलक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपना टारगेट पूरा करने में लग गई थी। वहीं दादाजी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं ट्रेनर भी अब जल्दी से दादाजी की तरफ देखकर बोला था, आपने बिल्कुल ठीक किया गुरुजी, वैसे भी ये जो दूसरी लड़की है ना, जब से आई है काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। इतना ही नहीं, आते ही एक लड़की को चांटा मार भी दिया। ये सुनकर दादाजी कुछ सोच में पड़ गए थे, फिर बोले थे, ठीक है, हमने फैसला किया है कि कुछ दिनों तक हम यहाँ लगातार आएंगे और सभी बच्चों को अपनी आँखों के सामने ट्रेन करेंगे। ये सुनकर तो वो ट्रेनर और भी ज़्यादा खुश हो गया था। वो बोला था, ये खुशखबरी जैसे ही मैं बाकी बच्चों को दूंगा, आप देखिएगा वे कितना खुश हो जाएंगे, क्योंकि सभी का सपना होता है कि आप जैसे महान इंसान के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिले। ये सुनकर दादाजी ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया था और बोले थे, जैसे ही इन दोनों बच्चियों के साथ चक्कर पूरे हो जाए, सभी बच्चों को एक साथ जमा कर लेना, आज हमें उन्हें कुछ स्पेशल क्लास देनी है। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, ट्रेनर काफ़ी खुश हो गए थे। वहाँ एक नहीं, कम से कम 7 से 8 ट्रेनर थे जो सभी बच्चों को हैंडल किया करते थे और तकरीबन उस फील्ड में केवल 70 से 80 बच्चे ही मौजूद थे।
वहाँ पर केवल उन्हीं बच्चों को लिया जाता था जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, जिनके अंदर कुछ अलग था, या फिर वे बच्चे जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुके थे। ऐसे लोगों को मोटिवेट करके वहाँ लाया जाता था और उन्हें दोबारा जीने लायक बनाया जाता था।